तो एक दिन हमारा जीवन स्वयं नष्ट हो जाता है। नदी दो मजबूत तटों के बीच से बहे तो समुद्र तक पहुंच जाती है और स्वयं समुद्र हो जाती है, लेकिन वही नदी अगर तटों को छोड़ दे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, तो वही नदी तबाही कर देती है, स्वयं भी नष्ट हो जाती है और उनको भी नष्ट कर देती है। दीपक की लौ अगर उसके ऊपर कांच रख दिया गया है तो बहुत समय तक प्रकाश देती रहती है, लेकिन यदि ऐसे ही खुली हवा में रहे तो थोड़े समय के बाद और वो प्रकाश विहीन हो जाती है, बुझ जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन, यदि सत्य की रोशनी पर हमने संयम का ग्लास रख दिया है तो वो सत्य की रोशनी हमारे जीवन को निरंतर प्रकाशित करती है। यदि हमने सत्य की धारा में और संयम के दो मजबूत तट बना लिए हैं तो हमारी वो जीवन की धारा ठीक ठीक अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या करें, हमें ये अनुशासित जीवन जीना जरा मुश्किल बात है। हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति विश्वास रख करके उनका सहारा लेना बंधन मालूम पड़ता है। संयम और सौगंध लेना हमें पराधीनता मालूम पड़ती है। हम निरंतर इंद्रिय और मन की गुलामी करते रहते हैं, जरा जरा सी चीजों के प्रति अपने सांसों को बर्बाद करते हैं, उसमें हमें बंधन और पराधीनता नहीं मालूम पड़ती। जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली संकल्प की सामर्थ्य है, संयम की सामर्थ्य है, वो हमें बंधन और पराधीनता मानती है। हमारी अपनी अज्ञानता का हम क्या करें, लापरवाही और मर्यादा विहीन जीवन जीना हमें अपनी शान मालूम पड़ती है। मर्यादित संयमित और अनुशासित जीवन जीने में हमें लगता है कि ये तो एक मुश्किल में डालने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। हमने बहुत जीवन लापरवाही में मर्यादा विहीन ढंग से जी लिया है। हम हमेशा दूसरे को अनुशासित और मर्यादित देखना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी प्रवृत्ति अत्यंत स्वच्छंद होकर के करते हैं। लकड़ी का सहारा दिया जाता है जब लताएं बेलें बढ़ने लगती हैं, कुशल माली आकर के उसको लकड़ी में लपेट देता है और हल्का सा धागा भी बांध देता है। लगता तो ये है कि अरे क्या करेगी ये लकड़ी, मुझे क्या इससे खाद पानी मिल रहा है, और ये रस्सी और बांध दी, धागा और बांध दिया, ये तो बंधन है, मेरे बढ़ने में बाधा बनेगा। नहीं, वो लकड़ी का सहारा और वो हल्का सा बंधन उस लता को संभाले भी है, और इतना ही नहीं ऊंचाइयां देने में मदद करता है। ठीक इसी तरह से सच्चे देवगुरु शास्त्र का सहारा लेकर अगर हम छोटे छोटे से जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जीवन निरंतर ऊंचाई उठेगा। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए और हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक और अपने जीवन को संयमित और अनुशासित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे को अनुशासित और मर्यादित बनाना ये हम अपने जीवन में चाहते हैं, और स्वयं भी हम कभी कभी अनुशासन स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अनुशासन या तो भयवश होता है या कि हमारे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, और यह कि कभी कभी हम अपने किसी और स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने आप को मर्यादित कर लेते हैं, लेकिन अपने आत्मकल्याण की दृष्टि से हमने अपने जीवन को कभी मर्यादित और अनुशासित नहीं किया। हमें इस बात का विचार करना चाहिए जब डॉक्टर कह देता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको इतनी चीजें खटाई तेल मिर्ची ये नहीं खानी चाहिए और ज्यादा तबीयत आपकी बिगड़ जाएगी, हम कहते हैं जैसा आप कहो वैसा कर लेंगे, पर ठीक हो जाना चाहिए। हम वहां अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं, हम उन चीजों को नहीं खाएंगे ऐसा संकल्प ले लेते हैं। इसी तरह से हमें अगर मृत्यु का भय सताने लगता है तब हम अपने आप को मर्यादित और संयमित कर लेते हैं। कोई और हमें बाध्य कर देता है तब भी हम इस तरह से, जैसे कि अपराध करने पर अपराधी को जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां कितनी सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं, थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, कितना अनुशासित और मर्यादित होकर जीना पड़ता है। लेकिन इस तरह का मर्यादित अनुशासित जीवन कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ मजबूरी में या कि भयवश या किसी स्वार्थ की पूर्ति या अपने अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया गया है अनुशासन, वो अनुशासन यहां उपयोगी नहीं है। जिसमें कर्मों की निर्जरा और आत्म कल्याण की दृष्टि हो, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में संकल्प लिए जाए, वो अनुशासन कहलाता है। दूसरे को अनुशासित करने की बात जो मैं आपसे कह रहा था, हम लोग चाहते हैं कि सब जो है और अनुशासित और व्यवस्थित रहें, लेकिन हमारा अपना जीवन हम अनुशासित और व्यवस्थित बनाना पसंद नहीं करते। अपने परिवार में हम अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वे बहुत अनुशासित रहें, हम अपने अन्य परिवार के सदस्यों से अपेक्षा रखते हैं, हम अपने समाज में अपेक्षा रखते हैं कि सब लोग अनुशासित जीवन जिएं, हमारे अनुशासन में रहें, लेकिन हम स्वयं अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाते। जो आत्मानुशासित है वह दूसरे के अनुशासित करने की चिंता नहीं करता, लेकिन मजा यह है कि जो आत्मानुशासित है उसके अनुशासन में तीनों लोक रहते हैं। देखते हैं अपन, आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी कैवम भूतम भुवन तिलक प्रावम तत्परेशु। ऐसा अद्भुत प्रभाव हमने संसार में किसी का नहीं देखा भगवान, न किसी पर प्रसन्न होकर वरदान देते, न किसी से नाराज होकर उसे श्राप देते हैं, फिर भी आज्ञावश्यम। अरे कोई किसी को वरदान दे उसका कुछ लाभ करे तो लोग उसकी बात मानते हैं, या कि किसी का बहुत टेरर हो तो उसकी बात मानते हैं, लेकिन आप तो उदासीन प्रवृत्ति रखने के बाद भी देखता हूं कि सारे लोग आपकी आज्ञा में चलते हैं, तीनों लोग आपके अनुशासन में हैं, आपने ये कैसे प्राप्त किया? इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने अपने आप को अनुशासित कर लिया है। आत्मानुशासन अपने जीवन में अनिवार्य है। दूसरे को अनुशासित करने की प्रक्रिया छोड़ करके अगर हम अपने आप को अनुशासित करने की प्रक्रिया अपना लेवें तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता। एक उदाहरण सुनाता हूं, मैं हमेशा आती तो उसको सुनकर के हंसी है, लेकिन क्या करें, हमें अपने जीवन में भी अपने जीवन को देख करके हंसी ना आकर के रोना आना चाहिए। दूसरा अगर ऐसा करता है तो उस पर हंसी आती है, लेकिन हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने नशा कर लिया, वैसे भी कम नशा क्या है, धन संपत्ति का नशा है, पद प्रतिष्ठा का नशा है और बहुत सारी बातों के नशे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। चार अच्छे कपड़े लगते हो जावे तो बाहर निकलते ऐसे झूमते हुए जैसे कि पहली बार जो है इनको वो चीज मिली हो। सभी सभी चीजों का नशा है, अलग अलग ढंग का नशा है, लेकिन इस सब के नशे के बावजूद भी, मोह के नशे के बावजूद भी और शराब पी ली तो और नशे में अब घर लौट रहा है वापस। रात के अंधेरे में घर लौटता है, चाबी निकालता है, ताले में लगाने की कोशिश करता है तो बार बार हाथ जो है नशे में और फिसल जाता है। वहीं पर गुजरता हुआ एक सिपाही देखता है तो सोचता है कि इसकी मदद कर दें, तो कहता है कि लाओ तुम्हारा हाथ हिल रहा है, चाबी हमारे हाथ में दो, हम तुम्हारा ताला खोल देते। कह ले रहने दो, हमें किसी पे विश्वास नहीं है। अरे भाई हम तुम्हारे सामने ही खड़े हुए हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं और तुम हमें इनकार कर रहे हो, तुम्हारे हाथ से चाबी लग नहीं रही। कह ले मुझे इन बातों में भ्रमित मत करो,
स्वयं भ्रमित व्यक्ति दूसरे से कह रहा कि हमें बातों में भ्रमित मत करो, तुम चाबी लेकर के भाग जाओगे, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जरा इस मकान को साध लो जी, मकान हिल रहा है, चाबी तुम्हें लगा लूंगा। अब बताओ हंसी आई कि नहीं आई? अपन भी यही कर रहे हैं कि सारी दुनिया को संभाल लो, हम तो ठीक है, हम तो अपने आप दूसरे को संभालने में लगे, दूसरे के अनुशासन में लगे हुए हैं हम, लेकिन स्वयं अपने आप को आत्मानुशासित भी तो करें। दूसरे को अनुशासन सिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कब? जब स्वयं हम उस अनुशासन से गुजरते हों तब। माता पिता अपने जीवन को अनुशासित कर लें और फिर अपने बच्चों को भी वही अनुशासन सिखाएं, तो देखिएगा कि कैसे नहीं वो उस अनुशासन को सीखते हैं। लेकिन हमारा जीवन स्वयं अनुशासित ना हो और हम दूसरे को कहें कि हमें संयमित होकर के और मर्यादित होकर के अपना जीवन जीना चाहिए, तो कोई कैसे उस बात पर विश्वास करे? असल में संयम के मायने हैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बना। वद समिति पालनाए दंडक चायन इंद्रिय जयन, इन सब बातों से संयम आता है। व्रत समिति का पालन करने से, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ देने से और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से जीवन संयमित होता है। ये सब चीजें कैसे आती? अपनी संकल्प शक्ति से आती। एक बार अगर हमारे भीतर आत्म संकल्प करने की सामर्थ्य उत्पन्न कर लें हम, और छोटे छोटे से संकल्प लेकर के अपनी उस सामर्थ्य को दृढ़ करते जाएं, तो कोई वजह नहीं कि हमारा जीवन संयमित ना हो। हम आज संकल्प लेने में भयभीत होते हैं, क्यों? क्योंकि मन में कहीं कमजोरी है। रात्रि में भोजन नहीं करते, लेकिन रात्रि भोजन त्याग करने का संकल्प लेने में पसीना आ जाता है। क्यों क्यों आ जाता है? कहीं भीतर कोई कमजोरी है हमारे कि कभी अवसर आ गया तब तो मुझे खाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में नहीं करते, लेकिन हम उन चीजों को नहीं करेंगे ऐसा हमने कभी संकल्प नहीं लिया। उस संकल्प के लिए बहुत आत्मबल चाहिए और वो कच्चे मन से लेने वाले के लिए संभव नहीं है। हमें अपने उस आत्मबल को बढ़ाना चाहिए और आत्मबल को बढ़ा करके और संकल्प लेना चाहिए, या कि छोटे छोटे संकल्प लेकर अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। दोनों प्रक्रियाएं। जिन्होंने अपने जीवन को संकल्पित कर रखा है, संयमित कर रखा है, उनके निकट रहेंगे, उनको देख करके हमारा आत्मबल बढ़ता चला जाता है और हमारे संकल्प की शक्ति आती जाती है। और या कि अगर कोई हमें इस तरह का सानिध्य नहीं मिलता तब हम क्या करें? तब हम अपने स्वयं अपने जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र को स्मरण करके छोटा सा संकल्प लें, उसका निर्वाह करें। एक घंटे के लिए मैं मौन रहूंगा, बहुत अच्छी बात है, उसको कंप्लीट करके फिर अपनी पीठ थपथपाएं कि इतना तो मैंने कर लिया, आज मैं सुबह का भोजन करके अब शाम को ही करूं, दिन भर में भोजन का विकल्प ना करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ठीक है, अब मैं शाम को भोजन करूंगा। उन चार घंटे जो मैंने भोजन नहीं किया, मुझे वैसे भी नहीं करना था, लेकिन मैंने चार घंटे के भोजन का त्याग कर दिया है। अगर आयु बंधेगी तो त्याग के परिणाम के साथ आयु बंधेगी, असंयम पूर्वक आयु बंधेगी तो खोटी आयु बंधेगी, लेकिन संयम पूर्वक अगर आयु का बंध होगा लेशा के विशुद्ध परिणामों के साथ तो खोटी आयु नहीं बंधेगी। ये संयम और संकल्प का महत्व है, लेकिन हमारा मन हम कच्चा बना लेते हैं, इसलिए हम इससे चूक जाते हैं। इतनी लाभ की प्रक्रिया, मैं मंदिर के दरवाजे पर प्रवेश करते ही संकल्पित करता हूं, अपने आप को संकल्प लेता हूं कि यहां पर मैं चारों प्रकार के भोजन का त्याग करता हूं। अरे इसमें किससे क्या पूछना है, लेकिन अपने आप का आत्मबल होना चाहिए, इतनी सावधानी और जागृति होनी चाहिए, तब जाकर कि ये संकल्प की शक्ति हमारे भीतर आएगी। जितनी देर मैं इस मंदिर के परिसर में हूं, मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग, वैसे ही मुझे कौन सा खाना है, लेकिन मैं विकल्प भी नहीं करूंगा। इस तरह छोटे छोटे संकल्प अपने जीवन में लिए जा सकते हैं और हर संकल्प अगले वाले संकल्प को लेने में मदद करता है, क्योंकि एक संकल्प लेने पर उससे प्राप्त होने वाली सफलता हमारे जीवन में आगे और संकल्प लेने की प्रेरणा देती है। आचार्य महाराज हमेशा कहते कि अपने दीक्षा का दिन याद रखना, अगर कभी वैराग्य में कमी होने लगे, अगर कभी जीवन में असावधानी या कि लापरवाही आने लगे, तो जिस दिन तुमने दीक्षा ली है, व्रत नियम संयम ग्रहण किया है, उस दिन को याद कर लेना। कितने विशुद्ध और निर्मल परिणाम रहे होंगे, कितना आत्मबल संचित किया होगा, तब जाकर के और ये संकल्प ग्रहण किया। अब उस दिन को याद रखो कि कैसे मैंने परिणाम बनाए, कितने विशुद्ध परिणामों से मैंने इस संकल्प को ग्रहण किया है। और कभी परिणामों में शिथिलता आने लगे तो हम फौरन स्मरण करके और अपने आप को संभाल सकते हैं। संकल्प हमें दृढ़ता देता है, संकल्प हमें कभी शिथिलता आने लगे तो संभाल लेता है। संकल्प की शक्ति अद्भुत है, संयम की सामर्थ्य अद्भुत है। हमें इस बात का अपने भीतर एहसास होना चाहिए, इस बात का विश्वास हमें करना चाहिए। और दूसरी चीज, संकल्प लेने पर, संयमित होने पर हमारे पुराने खोटे संस्कार अपने आप परिमार्जित होना शुरू हो जाते हैं। ये अपने भीतर ऑटोमेटिक एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे ही अपन संकल्प लेते हैं, देख लो, अनुभव करके देख लो, रोज थाली पर बैठ करके भोजन करते हैं, कभी बाल नहीं आता, लेकिन जिस दिन सुबह सोच लिया कि आज तो अगर बाल आएगा तो भोजन छोड़ दूंगा, जरूर आएगा। क्या मतलब? क्या पहले से कोई तय था ऐसा? मेरे अपने संकल्प के कारण असाता की उदीर्णा होने लगी, वो जो बाद में असाता का उदय आने वाला था, मेरी तपस्या के द्वारा, मेरे संयम के द्वारा पहले उदय में आकर के अपना फल देकर के नष्ट हो रहा है। पुराने खोटे संस्कार परिमार्जित होने लगे। ये जिसको हम कहते हैं कि परीक्षा के क्षण है। जैसे ही हम कोई संकल्प लेने की तैयारी करते हैं, जैसे ही हम कोई संकल्प लेते हैं, हमारे असाता कर्मों की उदीर्णा होती है और वे उदीरित होकर के समय से पहले उदय में आकर अपना फल देकर के नष्ट होते हैं। हम उस समय अगर अपने आप में दृढ़ हैं, संकल्पित हैं, तो हमारा बिगाड़ कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा लाभ होता है। संकल्प की शक्ति हमारे अंतरंग के परिणामों को परिमार्जित करती है। हमने अधिकांश रूप में देखा कि जब जब कोई मुनि बन जाते हैं, साल दो साल तक इतनी बाधाएं आएंगी, रोज दो चार दिन तक का लगातार अंतराय आ रहा। अरे, एक तो इतना संयम ग्रहण किया और उसी पर इतनी विपत्तियां, देखने वाले को लगेगा कि भैया इससे अच्छे तो हम ही हैं, ये तो और मुसीबत में और पड़ने का काम हो गया। कहते नहीं, वो जो मुसीबत बाद में आई थी आती, आज आकर के अब जो है समाप्त हो रही है, अब जीवन निर्मल होने वाला है, कलुषताएं हट रही हैं, ये विचार आना चाहिए। वास्तविकता यही है, हमारे विकारों का परिष्कार होना शुरू होता है जैसे ही हम संकल्प लेना शुरू करते हैं। एक उदाहरण आता है भर्तृहरि के जीवन का। वे मुनि हो गए थे, पहले तो वे बहुत श्रृंगार के काव्य लिखा करते थे, लेकिन एक दिन जब वैराग्य से भरकर मुनि दीक्षा ले ली, तब भर्तृहरि का वैराग्य शतक आज भी प्रसिद्ध है। वे विरक्त होकर के बहुत बड़े राजा के बेटे थे, शुभचंद्र आचार्य के सगे भाई थे। भर्तृहरि और शुभचंद्र आचार्य राजा के पुत्र थे, और भर्तृहरि ने जब दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, तब आत्म ध्यान में लीन है, अपार राज वैभव छोड़ करके आए हैं। और अचानक जब ध्यान से वे बाहर आते हैं, आंख खोलते हैं, तो जंगल में सामने जो रास्ता बना है उस पर एक बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। एक क्षण को मन में आता है कि इतना बेशकीमती हीरा, अद्भुत, मेरे राजकोष में भी नहीं था। संस्कार आसानी से नहीं जाता भैया, लाख रुपया की संपत्ति छोड़ के दीक्षा लेने वाला कई दिन तक नहीं भूल पाता कि लाख रुपया छोड़े। लाख रुपए का दान देने वाला कई दिन तक अपने आप दूसरे से सुनाता रहता कि हमने लाख रुपये दिए थे दान में, तुम्हें नहीं मालूम। ये संस्कार जाता नहीं, इसी संस्कार को हमारा संकल्प तोड़ देता है, इसको परिमार्जित कर देता है। मुनि बनकर के बैठे हैं लेकिन भीतर का संस्कार क्या कहता है कि बेशकीमती है हीरा, जिसको कल तक धूल समझ करके छोड़ के आए थे आज वो बेशकीमती मालूम पड़ने लगा, और मेरे राजकोष में नहीं था ऐसा हीरा। लेकिन अगले ही क्षण क्या देखते हैं कि दो घुड़सवार एक इस दिशा से एक दिशा से अपने रास्ते निकलते हैं और दोनों की दृष्टि उस हीरे पर पड़ती है, और दृष्टि पड़ते ही एक दूसरे की तरफ भी दृष्टि पड़ती है, और आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या बात होती और दोनों की तलवारें निकल आती हैं। बात यह होती है कि मैंने पहले देखा मेरा, दूसरा कहता मैंने पहले देखा मेरा, और नहीं मानते तो आ जाओ, और दोनों की तलवारें बाहर आ गई हैं और युद्ध होने लगा। भर्तृहरि मुनि महाराज शिला पर विराजमान और शांत भाव से देख रहे हैं, आंख बंद हो गई। अगले क्षण फिर आंख खुलती है तो हीरा वहीं पड़ा है, दोनों के शव भी वहीं पर पड़े हुए हैं। फिर से आंख मीच करके अत्यंत वैराग्य से भर जाते हैं कि अगर ऐसे ही एक क्षण के लिए मैं अगर चूक जाता तो मेरी भी यही स्थिति। एक क्षण तो मेरे मन में भी आया था कि बेशकीमती हीरा मेरे राजकोष में भी नहीं था, लेकिन वेश कौन सा है, वेश तो साधु का है, इसलिए संयमित है, अनुशासित है। मन अकेला डोला था, चेतना में क्षण भर को ऐसी विकृति आई थी लेकिन अगले क्षण उस संकल्प ने उस चेतना को फिर से निर्मल बना दिया और अत्यंत वैराग्य से भर गए। ये करती है संकल्प की शक्ति हमारे जीवन को परिष्कृत। और इतना ही नहीं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये संयम हमारे इंद्रियों और मन का सदुपयोग करना सिखाता है। अभी तो हम अपने इंद्रियों और मन का दुरुपयोग करते हैं, अगर देखें अपन लगता तो ये है कि हम अपने इंद्रियों और मन के द्वारा और कितनी कितनी चीजों का भोग उपभोग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो सब अपने इंद्रियों और मन की सामर्थ्य का दुरुपयोग है। जिन आंखों से हम दूसरे के रूप और वैभव को देख रहे हैं या दूसरे की कुरूपता को देख करके घृणा कर रहे हैं, या जिन आंखों के द्वारा और हम दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं, वे आंखें हमें इन सब के लिए नहीं मिली थी, वे तो भगवान जिनेंद्र के या कि अपने वीतराग स्वरूप के दर्शन करने के लिए। बताइएगा हम कितनी देर अपनी उन आंखों का सदुपयोग करते हैं, उतनी देर जितनी देर भगवान की वीतराग छवि को देखते हैं, या कि प्राणी मात्र के भीतर बैठी हुई आत्मा की वीतरागता को और अपने भीतर बैठी हुई वीतरागता को देखते हैं, कितनी देर देखते हैं? बस बेक्षण है हमारी आंखों के सदुपयोग के। कितनी क्षण अपनी आत्म प्रशंसा और दूसरे की निंदा सुनते हैं, शायद 24 घंटे ही अपनी आत्म प्रशंसा और दूसरे की निंदा सुनने के लिए कान सजग रहते हैं। कितने थोड़े से क्षण हैं जब अपने कल्याण की बात सुनते हैं इन कानों से और भगवान के गुणगान सुनते हैं इन कानों से, बहुत थोड़े हैं। कहां हुआ इन कानों का सदुपयोग, हमें जो जो इंद्रियां मिली, और मन में कितनी देर आते हैं अपने और दूसरे के कल्याण के विचार और वीतराग भाव, बाकी पूरे समय तो सिवाय राग द्वेष के इस मन के द्वारा और कोई विचार ही नहीं करता हूं मैं, मैंने मन का सदुपयोग कहां किया। अगर अपने आप को हम अनुशासित कर लें, मर्यादित कर लें, संयमित कर लें, तो ये मन और इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं हमारे उस संकल्प के ग्रहण कर लेने से। अगर रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है और मन में क्षण भर को विचार भी आ गया कि भूख लगी है खा लूं, नहीं मेरा संकल्प है अब तो कुछ भी हो जाए, मरण भी हो जाए तब भी नहीं खाऊंगा, तब देखिएगा वो संकल्प की शक्ति अगले क्षण हमें साहस देती है, दृढ़ता देती है और आसानी से रात व्यतीत हो जाती। लोगों ने उसी संकल्प की शक्ति से तो आज 5-5 उपवास किए हैं। वरना दिन में तीन बार खाने वाला व्यक्ति क्या एक बार का भोजन भी छोड़ सकता है? बहुत आसान नहीं है। मन को संकल्पित करना, मन में इतना साहस और आत्मबल जागृत करना रहता तो है, लेकिन उसके लिए, जागृति के लिए हमें वैसी सन्निधि चाहिए, वैसी संगति चाहिए, मन में वैसा भाव उत्पन्न होना चाहिए। तब जाकर के अब कैसा लगता है, किसी मान सम्मान के लिए तो नहीं किया, सिर्फ अपने कर्मों की निर्जरा के लिए किया कि देखें तो मेरे अंदर सामर्थ है कि नहीं। एक बार अब मन में ये आ तो गया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, ये बात जुदी है कि मैं रोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर साहस तो है। कभी अगर ऐसा आ जावे जीवन में संलेखना के समय, और जब भोजन की आकांक्षा तो है लेकिन ग्रहण नहीं करता शरीर, तब उस समय ऐसा स्मरण आ जाए कि एक बार तो मैंने 5 दिन तक और भोजन ही नहीं किया था, पानी भी नहीं पिया था, फिर भी मैं नहीं मरा था, अभी क्यों मैं चिंता करता हूं, छोड़ा मैंने। एक क्षण के अंदर ये भाव आ जावे तो भाई इस छोटे से संकल्प से भी सही कहा, संयम धारण करो। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक जितना संयम, तो संयम है, छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने अणुव्रत और महाव्रत के रूप में दोनों प्रकार से संयम का वर्णन किया है। इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणीयम, इदम ना आचरणीयम, इति नियमो प्रतिज्ञा जायते, ऐसा नियम कर लेना कि यह करूंगा यह नहीं करूंगा, इतना ग्रहण करूंगा इतना नहीं करूंगा, ऐसा नियम कर लेने का नाम ही प्रतिज्ञा है। क्या ऐसी छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं हम अपने जीवन में रोज ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं, और लेकर के और अपने इंद्रिय और मन को संयमित कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जीवन को संयमित करना यानी बहुत संतुलित होकर के जीवन जीना। संतुलित होना मतलब किसी भी अति में नहीं जाना, संयमित होने के मतलब है कि कब क्या कैसे और क्यों, इन 4 प्रश्नों के समाधान ढूंढ करके अपना जीवन जीना। क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, क्या बोलना, सब पर क्या लगा लो, ऐसा बोलना जिससे कि कल्याण हो अपना और दूसरे का, ऐसा खाना जिससे कि अपने और दूसरे का कल्याण हो सब में। जब जब भी कुछ करें तो क्या करना क्या नहीं करना इतना विचार कर ले, और कैसे करना जैसा विधि है आगम की उस अनुसार करना। भोजन करना तो कैसे करना, खड़े खड़े कर लेना, अरे नहीं, चाहे जहां बैठ करके करना, नहीं, शुद्ध जगह पर बैठना, आसानी से बैठकर भगवान का स्मरण करके, होटल में खड़े होकर के बैठ करके नहीं। कैसे में तो बहुत सारी चीजें, कैसे करना, भोजन तो करना है लेकिन कैसे करना, क्या प्रोसीजर है भोजन करने का, और कब करना, चाहे जब, दिन है तो दिन, रात है तो रात, 24 घंटे पशुवत भोजन पर मुंह मारते रहना, अरे वाह, तब तो फिर मुझ में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है, मैं काहे को मनुष्य हूं, मुझे अब अपने आप को और उसी कैडर में ले लेना चाहिए जिसमें कि और क्षुद्र जीव अपना जीवन व्यतीत करते, मुझ में और उनमें अब कोई अंतर नहीं रहा, मैं 24 घंटे चरता रहता हूं पशुओं के समान। ये अपने आप से कहना चाहिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप से कहें, सीखें अपने आप से कहना, नहीं तो दूसरे से कही हुई बात तो कड़ी जान पड़ेगी, अपने आप से कहेंगे तो ठीक जान पड़ेगी। अपने आप से ये बात कहके तो देखें एक बार कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना और क्यों खाना, काहे के लिए खा रहा हूं, सिर्फ अपने शरीर को पोषण करने के लिए, नहीं, तपस्या करने के लिए, दूसरे का उपकार करने के लिए और अपने रत्नत्र रूपी धर्म का पालन करने के लिए मुझे भोजन करना अनिवार्य, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ जीने के लिए नहीं भोजन करना है, इस जीवन से अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मुझे भोजन करना है, या कि मुझे और भी जो सांसारिक चीजें हैं वो सब क्यों करनी है, ऐसा प्रश्न उठाएं अपन, तब देखिएगा अपने आप हमारा जीवन जो है व्यवस्थित और अनुशासित, दूसरे के द्वारा लगाया गया अंकुश जीवन को ऊंचा नहीं उठाता भैया, अपने हाथ से अपने ऊपर लगाए हुआ अंकुश, अपने हाथ से अपने जीवन में निर्धारित की गई मर्यादाएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाती हैं, और संकल्प की शक्ति हमारे लिए सामर्थ्य देती है एक कौशल नरेश का उदाहरण है कि काशी नरेश या कौशल नरेश, उनके पास एक हाथी हुआ करता था। अपने समय में जब वे युद्ध में जाया करते थे तो सिर्फ उस हाथी की वजह से विजयी होते थे, क्योंकि वो हाथी इतना विश्वास पात्र था कि कभी भी वो राजा की क्षति नहीं होने देता था। हजारों की भीड़ के बीच हाथी इतना सामर्थ्यवान था कि सैकड़ों बाण लग जाने पर, भाले चुभ जाने पर भी राजा को बिना वापस लिए वहां से हटता नहीं था। लोग डरते थे उससे, सुंदर बहुत था और बलवान भी था, दोनों चीजें थी और विश्वस्त था। लेकिन किसके जीवन में विपत्ति नहीं आती। एक दिन ऐसा हुआ कि नदी किनारे पानी पीने के लिए गया हुआ हाथी दलदल में फंस गया। एक पैर निकालता है तो दूसरा फंस जाता है, दूसरा उठाता तो वो फंस जाता है, चारों पैर बहुत मुश्किल में है। एक दिन गुजर गया, प्रयास कर रहे हैं महाबत, लेकिन कोई नहीं सहाई उसे निकाल नहीं पा रहा है। राजा भी दुखी है, सारी प्रजा दुखी है, इतना बलशाली इतना सुंदर हाथी और दलदल में फंस गया। थोड़ा सा वृद्ध हो गया था इसलिए सामर्थ्य उसकी क्षीण हो गई थी, शरीर की सामर्थ्य, इसलिए अशक्त होने से अब कोई उपाय भी नहीं चल रहा था। रस्सियों से बांध करके भी खींचा गया, तब भी खींचने से क्या होगा, दलदल तो इतना गहरा है कि संभव ही नहीं है। क्या करें, सब आज 3 दिन हो गए लेकिन हाथी उसी में भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, अब हो सकता है कि प्राणांत हो जाए। राजा के मन में विचार आया कि क्या उपाय हो सकता है, सब हाथ बांधे खड़े हुए। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही है, जो हमारे बहुत अपने सगे हैं, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, मरण आना शुरू होता है, तब सब असहाय और हाथ बांधे खड़े रह जाते। हमारे परिणाम जैसे होंगे वैसा हमारा जीवन अंत में गुजरेगा, कोई सहाय नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। लेकिन पता नहीं किस गाफिलता में हम हैं कि शायद कोई आएगा और हमें हमारे परिणामों को संभाल लेगा। कोई नहीं संभालने वाला, अपने अपने परिणाम स्वयं संभालना पड़ती है, अपने आप को स्वयं हमें संभालने की तैयारी करनी चाहिए। अब राजा के मन में एक विचार आया कि बहुत पुराना महाबत जो स्वयं वृद्ध हो गया है, शायद वो कोई उपाय कर सके। उसे बुलाया गया, वो तो मुश्किल से ढूंढने पर मिला। आया वो वृद्ध महाव्रत लाठी टेकता हुआ, वो स्वयं भी वृद्ध हो गया, बूढ़े हाथी की तरफ जो दलदल में फंसा है उसे देख करके जोर से हंसा। जहां सारी जनता रो रही, राजा रो रहे हैं, वहां पर वो हंस रहा है। उसकी हंसी सुन करके हाथी बेहल हो कि आज मैं दलदल में फंस गया और ये मेरा सबसे प्यारा महाबत ये भी मुझ पर हंस रहा है, क्या बात। राजा ने कहा कि हंसते क्यों। उसने कहा कुछ नहीं, ये भूल गया अपनी सामर्थ्य, भूल गया, इसे अपनी सामर्थ्य याद दिलाओ, बुलाओ, सारे बाद रणभेरी बजवाओ। और आ गई रणभेरी और सारे बाजे जो कि सेना में पहले युद्ध से पहले बजाए जाते हैं, और जैसे जैसे रणभेरी बजती है वैसे वैसे हाथी झूमने लगता है और देर नहीं लगती, 5 मिनट के अंदर सारे दलदल को पार करके बाहर आ जाता है। कौन सी सामर्थ्य, एकमात्र अपने उस आत्मबल को जागृत करने की सामर्थ्य। संयम अगर हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है वो हमारे आत्मबल को, सामर्थ्य को याद दिला देता कि तुम वही हो अनंत शक्ति वाले आत्मा, भूल गए इन 5 इंद्रियों और मन के विषयों में, और अपनी उस अनंत सामर्थ्य को भूल करके दीनहीन और दरिद्र होकर के यहां अपना जीवन जी रहे हो। याद करो अपनी उस सामर्थ्य को, अगर एक बार ऐसा अपने मन में भाव आ जाए, आत्मबल जागृत हो जाए, फिर बहुत आसान है। ये सारी चीजें हमारे जीवन को कैसे नहीं परिवर्तित करेंगी, हमें विचार करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, अपने जीवन को अनुशासित और संयमित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर जी, हे गुरु शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शक।
शिव के निज कंटक पथ में विष कंटक होता
मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी ना आए ज्ञान। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी ना आए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान।
कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। किस्मत में लिख देता है वो राजा ताज, किसी की किस्मत में लिख देता है वो राजा ताज, और किसी को कर देता है निर्धन और मोहताज। झोली में कांटे रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। बस इसमें कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांट रे।
होगा
एक झोली भरे हैं एक झोली में कांटे रे, एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे रे। में कुछ भी नहीं ये तो बांटने वाला बांटे रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं ये तो बांटने वाला बांटे रे।
Thank you.
शैतान।
कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, एक झोली में कुछ भी नहीं ये तो बांटने वाला बांटे रे, तेरे बस में कुछ भी नहीं ये तो बांटने वाला बांटे रे।
Yeah.